नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। माइकल शिलेम्बर्गर की सन फ्रांसिस्को वाई प्रोग्रेसिव रूइन सिटीज दो सरीबनियम प्रकाशित शहरी नीति और राजनीतिक विचारधारा पर केंद्रित गैर कथा पुस्तक है। शीर्षक सैन फ्रांसिस्को के नाम पर एक व्यंग्यात्मक शब्द खेल है, लेकिन पुस्तक का दायरा लॉस एंजलिस, सिएटल और पोर्टलैंड जैसे पश्चिमी तटीय शहरों तक जाता है। शिलेम्बर्गर बेघरपन, नशीले पदार्थों से होने वाली मौतों, खुले ड्रग बाजारों, अपराध और सार्वजनिक अव्यवस्था को परस्पर जुड़ी समस्याओं के रूप में देखते हैं। उनका मुख्य तर्क है कि इन संकटों की व्याख्या केवल महंगे आवास या अपर्याप्त कल्याण खर्च से नहीं की जा सकती। वे प्रगतिशील नीति जगत में प्रचलित एक दृष्टि, जिसे वे विक्टिमोलॉजी कहते हैं, को केंद्रीय कारण मानते हैं। उनके अनुसार यह दृष्टि कुछ पीड़ित माने गए समूहों के लिए नियमों और परिणामों को लागू करने में हिचक पैदा करती है। पुस्तक का उद्देश्य इस नीति सोच को चुनौती देना और जवाबदेही, उपचार तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर आधारित विकल्प प्रस्तुत करना है। यह एक तीखी और विवादास्पद दलील है, जिस पर बेघरपन के अनेक विशेषज्ञों ने गंभीर आपत्तियां भी दर्ज की हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, विक्टिमोलॉजी की अवधारणा और नीति में जवाबदेही का प्रश्न। पुस्तक की सबसे विशिष्ट अवधारणा विक्टिमोलॉजी है। शिलेम्बर्गर इस शब्द से ऐसी नैतिक और राजनीतिक सोच का संकेत देते हैं, जिसमें समाज को मुख्यतः उत्पीड़क और पीड़ित समूहों में बांटकर देखा जाता है। उनके अनुसार, जब किसी व्यक्ति को केवल पीड़ित की पहचान से समझा जाता है, तब नशे, हिंसा, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने या कानून तोड़ने जैसे व्यवहारों पर प्रतिक्रिया कमजोर हो सकती है। लेखक का दावा है कि करुणा का यह रूप सहायता और छूट के बीच का अंतर मिटा देता है। उनकी दृष्टि में किसी व्यक्ति की पीड़ा, आघात या मानसिक बीमारी को स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन इससे हर व्यवहार को परिणामों से मुक्त नहीं किया जा सकता। यही तर्क पुस्तक को केवल सफाई, पुलिसिंग या आवास की चर्चा से अलग बनाता है। शिलेम्बर्गर नीति की नैतिक भाषा पर सवाल उठाते हैं, यानी कौन दया का पात्र है, किसकी एजेंसी मानी जाती है और सार्वजनिक नियम किसके लिए लागू होते हैं। आलोचकों के लिए यही ढांचा पुस्तक की कमजोरी भी है। उनका कहना है कि यह बेघरपन के संरचनात्मक कारणों और लोगों की अलग अलग परिस्थितियों को एक व्यापक वैचारिक आरोप में समेट देता है। इसलिए पाठक को विक्टिमोलॉजी को स्थापित सामाजिक विज्ञान की संज्ञा नहीं, बल्कि लेखक की विवादास्पद व्याख्यात्मक कसौटी के रूप में पढ़ना चाहिए। दूसरा, बेघरपन पर आवास की उपलब्धता बनाम व्यवहारिक और चिकित्सकीय संकट। शिलेम्बर्गर उस व्यापक नीति धारणा पर असहमति जताते हैं, जिसके अनुसार बेघरपन का प्रमुख कारण आवास की महंगाई और समाधान मुख्यतः बिना शर्त स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। वे ये नहीं कहते कि आवास अप्रासंगिक है, बल्कि तर्क देते हैं कि गंभीर नशे की लत, मानसिक बीमारी, सामाजिक अलगाव और लंबे समय की अस्थिरता को नजरअंदाज करके केवल आवास देने से समस्या हल नहीं होती। पुस्तक में उनकी चिंता विशेष रूप से उन लोगों को लेकर है जो सड़कों पर असुरक्षित परिस्थितियों में रहते हैं और जिन्हें उपचार या संरचित सहायता की जरूरत हो सकती है। उनका प्रस्तावित रुझान शेल्टर फर्स्ट, हाउसिंग अरंड के विचार से जुड़ा है, जिसमें पहले सुरक्षित आश्रय, नियम, उपचार और स्थिरता पर बल दिया जाता है। इस तर्क का व्यावहारिक आधार यह है कि आवास तभी दीर्घकालिक समाधान बनता है जब व्यक्ति को स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और दैनिक जीवन की सहायता भी मिले। लेकिन इस प्रश्न पर पुस्तक की स्थिति तीखे विवाद का विषय है। बेघरपन और आवास के शोधकर्ता अक्सर ऊंचे किराए, आय असमानता और आवास की कमी को प्रमुख कारक मानते हैं तथा हाउसिंग फर्स्ट के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए पुस्तक उपयोगी बहस खोलती है, पर इसके निष्कर्षों को अकेले अंतिम नीति मार्गदर्शन नहीं मानना चाहिए। तीसरा, हार्म रिडक्शन, अनिवार्य उपचार और नशा नीति की नैतिक दुविधा। नशीले पदार्थों की नीति पुस्तक का दूसरा केंद्रीय मोर्चा है। शिलेम्बर्गर हार्म रिडक्शन की उन व्याख्याओं की आलोचना करते हैं जो उनके अनुसार नशे के जोखिम को घटाने के नाम पर व्यक्ति को उपचार की ओर ले जाने का दबाव बहुत कम कर देती है। वे विशेष रूप से खुले में ड्रग सेवन, ड्रग बाजारों और घातक ओवरडोज की स्थितियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक व्यवस्था दोनों की विफलता मानते हैं। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति को नशे से जुड़े तत्काल जोखिम में छोड़ देना स्वायत्तता का सम्मान नहीं, बल्कि उपेक्षा हो सकता है। इसलिए वे उपचार, संयम और कुछ परिस्थितियों में अनैच्छिक हस्तक्षेप पर अधिक विचार की मांग करते हैं। यहां पुस्तक एक कठिन नैतिक तनाव सामने रखती है। एक और राज्य की जबरदस्ती, पुलिस कार्रवाई और संस्थागत उपचार के दुरुपयोग का इतिहास है। दूसरी ओर गंभीर लत या मनोवैज्ञानिक संकट में निर्णय लेने की क्षमता और जीवन रक्षा के प्रश्न है। लेखक इस तनाव का उत्तर अधिक निर्णायक हस्तक्षेप के पक्ष में देते हैं। आलोचक कहते हैं कि वे हार्म रिडक्शन के विविध रूपों जैसे मृत्यु रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क बनाने की भूमिका को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते। फिर भी पुस्तक यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि करुणा का मूल्यांकन केवल इरादे से नहीं बल्कि मृत्यु, स्वास्थ्य और पुनर्वास के वास्तविक परिणामों से भी होना चाहिए। चौथा, सार्वजनिक स्थान, कानून प्रवर्तन और शहरी जीवन की साझा सीमाएं। सैन फ्रांसिस्को में शहर केवल प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि साझा नियमों से चलने वाला सार्वजनिक संसार है। शेलेनबर्गर के अनुसार फुटपाथों पर स्थायी शिविर, खुले में नशा, सार्वजनिक मलत्याग, हिंसा और दुकानों में चोरी जैसे व्यवहारों को सामान्य मान लेना नागरिक जीवन के लिए गहरा नुकसान है। उनका तर्क यह नहीं है कि हर समस्या का उत्तर कठोर दंड है, बल्कि वे कहते हैं कि जब नियम लागू ही नहीं होते तब सबसे अधिक असुरक्षित लोग, जिनमें बेघर व्यक्ति, छोटे कारोबारी, बच्चे और सार्वजनिक परिवहन के उपयोगकर्ता शामिल हैं, सबसे बड़ा मूल्य चुकाते हैं। इस दृष्टि से कानून प्रवर्तन का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सुरक्षित सीमाएं बनाना होना चाहिए। लेखक न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अनुभव का उल्लेख करते हुए आश्रय के विकल्प और सार्वजनिक स्थानों पर सोने के नियमों को जोड़ने का समर्थन करते हैं। उनकी नीति सोच में सेवा और अनुशासन साथ चलते हैं, केवल एक दूसरे के विकल्प नहीं है। इस तर्क पर भी जरूरी सावधानी है, किसी शहर में अपराध, बेघरपन और पुलिसिंग के परिणाम स्थानीय कानूनों, बजट, आवास बाजार और स्वास्थ्य सेवाओं से प्रभावित होते हैं, इसलिए सरल शहर बनाम शहर तुलना सीमित हो सकती है। पुस्तक की उपयोगिता इस प्रश्न में है कि क्या सार्वजनिक अव्यवस्था को सामान्य मानना वास्तव में कमजोर लोगों के हित में है। अंत में प्रगतिशील शासन की आलोचना और पुस्तक की प्रमाण संबंधी सीमाएं। शेलेनबर्गर स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने पहले नशीले पदार्थों के अपराधीकरण में कमी, किफायती आवास और कारावास के विकल्पों का समर्थन किया था। इस पृष्ठभूमि के माध्यम से वे अपनी आलोचना को दाएं बनाम बाएं की साधारण बहस के बजाय नीति परिणामों की पुनर्समीक्षा के रूप में रखते हैं। उनका दावा है कि पश्चिमी तटीय शहरों में कार्यकर्ता समूहों, गैर लाभकारी संगठनों और निर्वाचित नेताओं की प्राथमिकताओं ने ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जिनमें जवाबदेही को दमन समझा गया। पुस्तक का व्यापक निष्कर्ष है कि विचारधारात्मक निष्ठा खराब परिणाम दिखने पर भी नीतियों को बदलने से रोक सकती है। यह एक महत्वपूर्ण शासन संबंधी चेतावनी है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक धारा में लक्ष्य और परिणाम अलग हो सकते हैं। फिर भी पुस्तक की आलोचनात्मक स्वीकृति को समझना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और अटलांटिक में प्रकाशित समीक्षाओं सहित अनेक आलोचनाओं ने कहा कि लेखक जटिल शोध, बेघरपन विशेषज्ञों की सहमति और वैकल्पिक व्याख्याओं को पर्याप्त स्थान नहीं देते, खासकर आवास लागत और बेघरपन के संबंध को कम महत्व देने पर आपत्ति हुई। अतः पुस्तक को एक जोरदार प्रतिवाद के रूप में पढ़ना अधिक उचित है, न कि शहरी संकटों का निर्विवाद शोध सार। इसकी ताकत समस्या की नैतिक और राजनीतिक भाषा को चुनौती देना है, जबकि इसकी सीमा कारणों की बहुलता को कम करके देखना हो सकती है। निष्कर्ष में, सैन फ्रांसिस्को उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो शहरी बेघरपन, नशा नीति, अपराध, पुलिसिंग और सार्वजनिक स्थानों के प्रश्नों को केवल नारेबाजी के स्तर पर नहीं समझना चाहते। नगर प्रशासक, पत्रकार, सामाजिक कार्य के विद्यार्थी, नीति में रुचि रखने वाले नागरिक और प्रगतिशील राजनीति से असंतुष्ट पाठक इसमें एक स्पष्ट, चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण पाएंगे। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह सहायता, स्वायत्तता, उपचार और जवाबदेही के बीच कठिन संतुलन पर सीधे प्रश्न उठाती है। यह पाठक को यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि किसी नीति का मानदंड उसका करुणामय इरादा होना चाहिए या उसके मापे जा सकने वाले परिणाम भी। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान, इसकी आक्रामक वैचारिक व्याख्या है। यह आवास, गरीबी या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर केंद्रित सामान्य विवरण से हटकर प्रगतिशील नैतिक भाषा और संस्थागत निर्णयों को संकट के केंद्र में रखती है। यही विशेषता इसे प्रभावशाली बनाती है और यही इसे विवादास्पद भी बनाती है। संतुलित पाठक के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि पुस्तक को लेखक के सशक्त अभियोग के रूप में पढ़ा जाए, फिर इसके दावों की तुलना बेघरपन, आवास, सामर्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और हार्म रिडक्शन पर उपलब्ध शोध से की जाए। इस तरह यह पुस्तक अंतिम उत्तर देने से अधिक शहरी नीति के असहज लेकिन आवश्यक प्रश्नों पर गंभीर जांच को प्रेरित करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल शेलेनबर्गर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।